एकत्र ज्ञान गोष्ठी, आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जो हमारे अपने दिमाग के काम करने के तरीके को समझने और शायद उसे बेहतर बनाने का वादा करती है।
बिल्कुल, आज का विषय है रिक हैंसन और रिचर्ड मेंडियस की किताब बुद्धास ब्रेन, द प्रैक्टिकल न्यूरोसाइंस ऑफ हैप्पीनेस, लव एंड विजडम। और ये किताब ना काफ़ी दिलचस्प है, क्योंकि ये दिमाग के विज्ञान मतलब न्यूरोसाइंस और हजारों साल पुरानी बौद्ध ध्यान साधनाओं को एक साथ लाती है।
और आजकल के समय में इसकी ज़रूरत शायद पहले से कहीं ज़्यादा है ना। मतलब तनाव, चिंता, ये भागदौड़ भरी ज़िंदगी, ऐसा लगता है जैसे हम बस बाहरी चीज़ों पर रिएक्ट ही करते रह जाते हैं।
हाँ बिल्कुल,
ये किताब एक उम्मीद सी देती है कि शायद हम अपने अंदरूनी अनुभव को बदल सकते हैं।
हाँ, ये सिर्फ उम्मीद नहीं देती बल्कि तरीका भी बताती है। इसका जो मूल विचार है ना, वो ये है कि हम जानबूझकर मतलब इंटेंशनली अपने मन का इस्तेमाल करके अपने दिमाग की वायरिंग बदल सकते हैं।
अच्छा, वायरिंग बदल सकते हैं।
हाँ, ज्यादा खुशी के लिए, ज्यादा सुकून और ज्यादा समझदारी के लिए। तो चलिए देखते हैं कि ये दिमागी नक्शा हमें कहाँ ले जाता है।
ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लेखकों से। कौन है ये लोग? मुख्य लेखक हैं रिक हैंसन। ये एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट हैं और यूसी बर्कले के ग्रेटर गुड साइंस सेंटर में सीनियर फेलो भी और बेस्ट सेलिंग लेखक भी हैं। मतलब दिमाग के विज्ञान पर इनकी पकड़ काफी मजबूत लगती है।
हाँ वो तो है, लेकिन जो बात उन्हें खास बनाती है वो ये है कि वो सिर्फ लैब वाले साइंटिस्ट नहीं है। उन्होंने दशकों तक ध्यान साधनाओं का, जिन्हें कंटेम्पलेटिव प्रैक्टिस कहते हैं, गहरा अभ्यास किया भी है और सिखाया भी है।
अच्छा,
वो एक तरह से इन दोनों दुनियाओं मतलब साइंस और अंदरूनी अनुभव के बीच एक पुल जैसे हैं। वेलस्प्रिंग इंस्टीट्यूट फॉर न्यूरोसाइंस एंड कंटेम्पलेटिव विजडम के संस्थापक भी हैं।
और उनके साथ हैं रिचर्ड मेंडियस, एक न्यूरोलॉजिस्ट, तो मतलब मेडिकल एक्सपर्ट वाला एंगल भी है।
हाँ, और वो जरूरी है ताकि बातें सिर्फ हवा हवाई ना लगें। एक सॉलिड साइंटिफिक बेस मिलता है उससे।
सही का।
हैंसन का ये जो दोहरा अनुभव है ना, वही इस किताब की जान है असल में। वो सिर्फ ये नहीं कहते कि खुश रहो या चलो भाई ध्यान करो, नहीं।
हाँ, वो तो कोई भी कह देता है।
बिल्कुल, वो समझाते हैं कि जब आप कोई खास मानसिक अभ्यास करते हैं जैसे ध्यान या कृतज्ञता, तो आपके दिमाग में न्यूरॉन्स के लेवल पर असल में क्या होता है, कौन से सर्किट एक्टिवेट होते हैं और इन अभ्यासों को कैसे करें ताकि दिमाग में जो पॉजिटिव बदलाव है वो ज्यादा से ज्यादा हो, मैक्सिमाइज्ड हो।
ओके, तो संक्षेप में ये किताब क्या है? क्या हम इसे अपने दिमाग के लिए एक यूजर मैनुअल कह सकते हैं?
हाँ हाँ बिल्कुल, ढिल सकते हैं, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। ये किताब इस विचार पर आधारित है कि हमारा दिमाग कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसमें एक कमाल की क्षमता है जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी।
न्यूरोप्लास्टिसिटी, ये शब्द सुना तो है, इसका मतलब क्या है आसान भाषा में?
आसान भाषा में मतलब दिमाग का लचीलापन, अनुभव के आधार पर खुद को बदलने की क्षमता। जैसे हम कोई नई स्किल सीखते हैं या कोई नई आदत डालते हैं तो दिमाग में नए कनेक्शंस बनते हैं।
अच्छा,
हमारा हर विचार, हर भावना, खासकर जिन पर हम ध्यान देते हैं, वो दिमाग में या तो नए रास्ते बनाते हैं या पुराने रास्तों को और पक्का करते हैं। जैसे जैसे पगडंडी पर बार बार चलने से वो रास्ता बन जाता है ना,
बिल्कुल
वैसे ही।
समझ गया। लेकिन किताब ये भी बताती है कि हमारे दिमाग की एक डिफॉल्ट सेटिंग थोड़ी गड़बड़ है, वो नकारात्मकता पूर्वाग्रह वाली बात, नेगेटिविटी बायस।
बिल्कुल सही पकड़ा, ये हमारे विकास क्रम की देन है, एवोल्यूशनरी चीज है। सोचे हमारे जो पूर्वज थे उनके लिए जान बचाना ज्यादा जरूरी था।
हाँ बिल्कुल, शेर आ गया तो भागना पड़ेगा।
एग्जैक्टली, तो खतरों पे ध्यान देना, नेगेटिव चीजों को याद रखना, उनके लिए सर्वाइवल का सवाल था। अच्छी चीजें जैसे सुंदर फूल या अच्छा मौसम, वो ठीक है पर जानलेवा नहीं है। तो इसी वजह से आज भी हमारा दिमाग बुरी खबरों, आलोचनाओं या अपनी गलतियों को ज्यादा पकड़ता है, उन्हें ज्यादा वजन देता है। लेखक कहते हैं दिमाग बुरी चीजों के लिए वेलक्रो जैसा है, फौरन चिपक जाती हैं।
और अच्छी चीजों के लिए टेफ्लॉन जैसा, फिसल जाती हैं। अरे वाह, ये तो बड़ी सही उपमा है,
है ना? और यही आज के जमाने में बेवजह के तनाव और चिंता का एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि अब हमारी जान को उतना खतरा नहीं है, पर दिमाग का वो पुराना अलार्म सिस्टम अभी भी बहुत सेंसिटिव है।
तो ये किताब इसी बायस को, इस पूर्वाग्रह को समझने और इससे ऊपर उठने के तरीके बताती है।
हाँ बिल्कुल, ये प्रैक्टिकल तकनीक देती है जिनसे हम जानबूझकर कॉन्शियसली अपने दिमाग को ज्यादा शांत, ज्यादा रेजिलियंट यानी लचीला और ज्यादा करुणामय बना सकते हैं। किताब ना चार हिस्सों में बटी है, पहले दुख के कारण, फिर खुशी, प्यार और ज्ञान के कारण। तो पहले दुख की जड़ को समझना जरूरी है।
ठीक है, तो पहला हिस्सा है दुख के कारण। इसमें दिमाग के विकास की कहानी है जैसा आपने बताया।
हाँ, पहला अध्याय है द इवॉल्विंग ब्रेन। वो यही बताता है कि दिमाग का पहला मकसद था जिंदा रहना, खुशी पाना नहीं। इसी वजह से वो खतरे का अलार्म वाला सिस्टम जिसे एमिग्डाला कहते हैं।
अमिग्डाला, हाँ सुना है इसके बारे में, दिमाग का छोटा सा हिस्सा।
हाँ, बादाम के शेप का, ये बहुत संवेदनशील हो गया। ये दिमाग का वो हिस्सा है जो खतरे को भांपकर फौरन लड़ो या भागो वाली प्रतिक्रिया, मतलब फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स शुरू करता है। ये पहले जरूरी था, पर अब अक्सर छोटी छोटी बातों पर भी एक्टिवेट हो जाता है। बॉस की ईमेल देखी और धड़कन तेज। चासे लिया गया एक कॉन्सेप्ट है। पहला तीर है जिंदगी का वो दर्द जिससे बचा नहीं जा सकता।
जैसे?
जैसे शारीरिक दर्द, कोई बीमार हो गया, कोई नुकसान हो गया, किसी ने दिल दुखा दिया, कोई निराशा हाथ लगी, ये सब तो जीवन का हिस्सा है, इन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। ये पहला तीर है।
ठीक है।
लेकिन दूसरा तीर वो है जो हम खुद को मारते हैं। उस दर्द पर हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, जैसे मान लीजिए किसी प्रोजेक्ट में फेल हो गए, ये पहला तीर है। दुख तो होगा,
वहां जाहिर है,
पर उसके बाद खुद को कोसना, मैं तो बेकार हूं, मुझसे कुछ नहीं होता, घंटों उसी के बारे में चिंता करना, ये सब दूसरे तीर हैं। और अक्सर ये दूसरे तीर पहले तीर से कहीं ज्यादा तकलीफ देते हैं।
अच्छा, मतलब पहला तीर तो बाहरी घटना है।
हाँ,
लेकिन दूसरा तीर हमारी अंदरूनी प्रतिक्रिया है।
और क्या दूसरे तीर से बचा जा सकता है?
बिल्कुल, यही तो पॉइंट है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो पहला तीर एमिग्डाला को जगाता है, स्ट्रेस रिस्पॉन्स शुरू होता है, पर हमारा सोचने समझने वाला दिमाग, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, पीएफसी, जिसे हमने दिमाग का सीईओ कहा था,
हाँ, सीईओ,
वो अक्सर उस दर्द के बारे में कहानियां गढ़कर, चिंता करके, जजमेंट पास करके दूसरा तीर चलाता रहता है। तो किताब का लक्ष्य है हमें ये सिखाना कि हम ये दूसरे तीर चलाना कैसे बंद करें।
ये तो बहुत प्रैक्टिकल बात लग रही है। ठीक है, तो दुख की जड़ कुछ कुछ समझ आई, अब आते हैं समाधान पर, खुशी के कारण। यहां से चीजें थोड़ी उम्मीद जगाती हैं।
हाँ बिल्कुल, दूसरा भाग खुशी पर है और तीसरा अध्याय टेकिंग इन द गुड किताब की सबसे जरूरी, सबसे प्रैक्टिकल तकनीकों में से एक देता है। याद है वो टेफ्लॉन वाली बात?
हाँ, कि अच्छी चीजें दिमाग पर टिकती नहीं।
एग्जैक्टली, तो हमें जानबूझकर अच्छी चीजों को पकड़ना सीखना होगा, उन्हें दिमाग में रजिस्टर करवाना होगा। इसके लिए हैंसन एक चार कदमों वाली प्रक्रिया बताते हैं, HEAL, HEAL।
पहला है H, have, मतलब कोई भी छोटा बड़ा सकारात्मक अनुभव ढूंढें या होने दें, जैसे सुबह की चाय का स्वाद, किसी की मुस्कान, कोई काम अच्छे से पूरा कर लिया, धूप अच्छी लग रही है, कुछ भी।
ओके, उसे नोटिस करना।
हाँ, फिर दूसरा E, enrich, मतलब उस अच्छे एहसास को थोड़ा बढ़ाएं, उस पर 10-20 सेकंड ध्यान दें, उसे अपने शरीर में महसूस करें, कहां महसूस हो रहा है, कैसा लग रहा है।
उसे गहरा करना।
बिल्कुल। तीसरा ए, एब्जॉर्ब, कल्पना करें कि वो अच्छा एहसास आपके अंदर समा रहा है, जैसे स्पंज पानी सोखता है, उसे अपनी एक अंदरूनी ताकत बनाएं, इरादा करें कि ये आपके साथ रहे।
अच्छा, उसे सोख लेना।
और चौथा एल, लिंक, ये थोड़ा एडवांस है, ऑप्शनल है, जब आप अच्छा महसूस कर रहे हो तो हल्के से किसी पुरानी दुखद याद या किसी नेगेटिव भावना को भी मन में आने दें, बहुत धीरे से।
अरे ऐसा क्यों? आइडिया ये है कि वो जो पॉजिटिव रिसोर्स आपने अभी महसूस किया है, वो उस नेगेटिव चीज को धीरे धीरे शांत कर सकता है, उसे न्यूट्रलाइज कर सकता है, यहाँ तक कि उसे बदल भी सकता है।
ओ, ये तो न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर वाला सिद्धांत हो गया, मतलब जो न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं वो एक साथ जुड़ जाते हैं। तो आप पॉजिटिव और नेगेटिव को एक साथ एक्टिवेट करके नेगेटिव का असर कम कर रहे हैं।
बिल्कुल, यही तो न्यूरोप्लास्टिसिटी का जादू है। हम सचमुच अपने दिमाग में खुशी, शांति और ताकत के नए रास्ते बना सकते हैं, छोटे छोटे पलों को इस्तेमाल करके।
जबरदस्त। अच्छा, चौथा अध्याय है कूलिंग द फायर्स, ये शायद तनाव कम करने के बारे में है।
हाँ, ये हमारे नर्वस सिस्टम के दो हिस्सों को बैलेंस करने की बात करता है। एक है लड़ो या भागो वाला उत्तेजित सिस्टम, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं, और दूसरा है आराम और पचाव वाला शांत सिस्टम, पैरासिंपैथेटिक।
हाँ, ये तो सुना है।
अक्सर हम पहले वाले मोड में ज्यादा रहते हैं, तो ये अध्याय तरीके बताता है दूसरे वाले को एक्टिवेट करने के, जैसे गहरी धीमी सांसें लेना। जब हम सांस धीरे धीरे छोड़ते हैं तो ये पैरासिंपैथेटिक सिस्टम को सिग्नल भेजता है। मांसपेशियों को ढीला छोड़ना, शरीर पर ध्यान देना, ये सब दिमाग को बताते हैं कि सब ठीक है, रिलैक्स करो, और तनाव का बटन बंद होता है।
ये तकनीकें तो बहुत काम की हैं, रोज की जा सकती हैं। अच्छा, पांचवा अध्याय इरादों के बारे में है, स्ट्रॉन्ग इंटेंशंस, इसका क्या मतलब है?
हाँ, ये हमारे दिमाग के CEO यानी प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स PFC की ताकत पर जोर देता है। याद है, PFC प्लानिंग, फोकस, विल पावर के लिए जिम्मेदार है।
हाँ।
तो जब हम कोई स्पष्ट इरादा बनाते हैं, जैसे आज मैं इस मीटिंग में शांति से अपनी बात रखूंगा, या अगले एक घंटे में सिर्फ इसी रिपोर्ट पर काम करूंगा, तो हम PFC को सक्रिय करते हैं। हम अपने दिमाग को एक दिशा देते हैं, इससे उस इरादे पर टिके रहने की संभावना बढ़ जाती है। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये दिमाग को तैयार करना है।
मतलब इरादे में भी न्यूरोसाइंस है। और छठा अध्याय इक्वानिमिटी यानी समभाव, ये थोड़ा मुश्किल लगता है। मुश्किल हालात में भी शांत बने रहना, ये कैसे होता है?
हाँ, ये साधना का विषय है। समभाव का मतलब उदासीनता नहीं है, बल्कि एक तरह का मानसिक संतुलन। इसका संबंध दिमाग के एक हिस्से एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स ACC से है। ACC भावनाओं को मैनेज करने और ध्यान को स्थिर रखने में मदद करता है।
तो इसे कैसे मजबूत करें?
ध्यान की कुछ विधियां हैं, जैसे माइंडफुलनेस, विचारों और भावनाओं को आते जाते बादलों की तरह देखना, बिना उनमें उलझे, बस साक्षी भाव से देखना। इससे ACC मजबूत होता है और हम बाहरी उतार चढ़ाव से कम हिलते हैं, अंदर एक स्थिरता आती है।
तो ये था खुशी का रास्ता। अब आते हैं तीसरे भाग पर, प्यार के कारण। ये भी उतना ही जरूरी है, शायद खुशी से भी ज्यादा।
निश्चित रूप से।
हाँ।
और दिमाग के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है। सातवां अध्याय है टू वुल्व्स इन द हार्ट।
अच्छा।
ये एक पुरानी चेरोकी कहानी से शुरू होता है। कहानी कहती है कि हमारे अंदर दो भेड़िये लड़ रहे हैं, एक प्रेम, सहानुभूति और शांति का है, दूसरा नफरत, डर और लालच का।
और जीतता कौन है?
कहानी कहती है जिसे तुम खिलाते हो, मतलब हम जिस तरह की भावनाओं और विचारों पर ज्यादा ध्यान देते हैं, वही हमारे अंदर ज्यादा ताकतवर हो जाते हैं। ये अध्याय बताता है कि दिमाग में दोनों तरह के सर्किट होते हैं। मिरर न्यूरॉन्स है जो हमें दूसरों की भावनाओं को महसूस करने में मदद करते हैं।
मिरर न्यूरॉन्स, वो क्या होते हैं?
ये बड़े दिलचस्प न्यूरॉन्स है। जब हम किसी को कोई काम करते हुए या कोई भावना महसूस करते हुए देखते हैं, तो हमारे दिमाग में भी वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जैसे हम खुद वो कर रहे हों। ये सहानुभूति का आधार है। फिर ऑक्सीटोसिन जैसे हार्मोन हैं जो हमें जुड़ाव महसूस कराते हैं, जिसे लव हार्मोन भी कहते हैं।
अच्छा।
तो हमें चुनना है कि हम सहानुभूति और दयालुता वाले सर्किट को ज्यादा इस्तेमाल करें, उन्हें खिलाएं ताकि वो मजबूत बने।
लेकिन आठवां अध्याय कंपैशन एंड असेशन एक जरूरी संतुलन की बात करता है, करुणा और दृढ़ता। सिर्फ दूसरों का ही ख्याल रखना काफी नहीं है।
ऐसा बिल्कुल नहीं, ये बहुत जरूरी बात है। सच्ची करुणा का मतलब ये नहीं कि हम डोरमैट बन जाएं, अपनी जरूरतें भूल जाएं या कोई हमारा फायदा उठाए।
ये कमजोरी नहीं है।
दिमाग में सहानुभूति के सर्किट जैसे इंजुला, ACC अलग हैं, और अपनी बात रखने, अपनी सीमाएं तय करने यानी एजेंसी से जुड़े सर्किट के लिए अलग सिस्टम है।
तो लक्ष्य क्या है?
लक्ष्य है दोनों को साधना, दूसरों के प्रति संवेदनशील भी रहना, और जरूरत पड़ने पर मजबूती से पर बिना आक्रामकता के अपनी बात रखना भी। इसे हेल्दी असर्शन कहते हैं।
समझ गया। अच्छा, नौवां अध्याय है बाउंडलेस काइंडनेस, असीम दया। ये शायद मेटा या प्रेम कृपा ध्यान की बात करता है।
हाँ बिल्कुल, ये उस प्यार को और फैलाता है, सिर्फ अपने करीबी लोगों से आगे बढ़कर। ये अभ्यास सिखाता है कि कैसे पहले खुद के लिए प्रेम और शुभकामनाओं की भावना पैदा करें, फिर अपने प्रियजनों के लिए, फिर उन लोगों के लिए जिनके प्रति हम न्यूट्रल हैं, फिर उन लोगों के लिए जिनसे हमें थोड़ी मुश्किल होती है।
मुश्किल लोगों के लिए भी।
हाँ। और आखिर में सभी प्राणियों के लिए। ये सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे या मुश्किल लगे, पर यह अभ्यास दिमाग में पॉजिटिव इमोशंस के नेटवर्क को बहुत गहरा करता है। मन में एक गर्म जोशी, एक खुलापन लाता है। ये कंडीशनिंग है एक तरह से।
दिलचस्प। और अब चौथा और आखिरी भाग, ज्ञान के कारण, विजडम। इसमें जरूर माइंडफुलनेस की बात होगी।
हाँ बिल्कुल। 10वां अध्याय है फाउंडेशंस ऑफ माइंडफुलनेस। ये माइंडफुलनेस को ठीक से परिभाषित करता है, वर्तमान क्षण पर जानबूझकर बिना आलोचना किए या जजमेंट के ध्यान देना, बस देखना कि क्या हो रहा है अंदर और बाहर।
ये सिर्फ एक आध्यात्मिक अभ्यास नहीं है जैसा आपने कहा।
नहीं बिल्कुल नहीं, इसके बहुत स्पष्ट न्यूरोलॉजिकल फायदे हैं। ये PFC को मजबूत करता है जिससे हमारा ध्यान बेहतर होता है, हम कम डिस्ट्रैक्ट होते हैं। ये एमिगडाला को शांत करता है, मतलब हम कम रिएक्टिव होते हैं, ज्यादा सोच समझकर प्रतिक्रिया देते हैं। और ये इंसुला को बेहतर बनाता है। इंसुला वो हिस्सा है जो हमें अपने शरीर के अंदरूनी संकेतों जैसे दिल की धड़कन, पेट में महसूस होना को महसूस करने में मदद करता है। इसे इंटरोसेप्शन कहते हैं।
तो माइंडफुलनेस से हम अपने मन के ड्रामा में बहने के बजाय उसे देख पाते हैं।
हाँ एग्जैक्टली, थोड़ी दूरी बना पाते हैं अपने विचारों और भावनाओं से। 11वां अध्याय है ब्लिसफुल कॉन्सेंट्रेशन। ये गहरी ध्यान अवस्थाओं की बात करता है जिन्हें बौद्ध धर्म में ध्यान झानास कहा जाता है।
ये क्या है? क्या ये कोई जादुई अवस्था है?
जादुई तो नहीं, पर बहुत गहरी शांति, आनंद और तीव्र एकाग्रता की अवस्थाएं हैं। इनमें डोपामाइन जैसे न्यूरोट्रांसमीटर जो इनाम और फोकस से जुड़े हैं अहम भूमिका निभाते हैं। ये दिखाता है कि हमारा दिमाग गहरे संतोष और मानसिक स्पष्टता का अनुभव करने में पूरी तरह सक्षम है।
और आखिरी अध्याय 12वां, अनशेकेबल सेल्फ या द फॉर्मेशन ऑफ सेल्फ। ये थोड़ा गहरा लगता है, मैं या स्वर की भावना पर सवाल उठाता है।
हाँ ये थोड़ा सा फिलोसॉफिकल भी है, पर न्यूरोसाइंस पर आधारित है। ये बताता है कि हमारा जो मैं का एहसास है, ये जो लगता है कि मैं एक ठोस स्थायी चीज हूँ जो मेरे शरीर और दिमाग में रहती है,
हम सबको यही लगता है,
वो असल में दिमाग की एक रचना है, एक कहानी है जो दिमाग खुद को सुनाता है। खासकर डिफॉल्ट मोड नेटवर्क DMN की गतिविधि से जुड़ा है। DMN वही नेटवर्क है जो तब एक्टिव होता है जब हम कुछ खास नहीं कर रहे होते और हमारा मन भूतकाल या भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, अपने बारे में सोचता रहता है।
अच्छा, वो जो मन की बकबक चलती रहती है।
हाँ वही। तो गहरी ध्यान साधनाएं जैसे माइंडफुलनेस इस DMN को शांत कर सकती हैं।
तो फिर क्या होता है? क्या मैं गायब हो जाता है?
गायब शायद सही शब्द नहीं है, बल्कि ये समझ आता है कि ये जो मैं का एहसास है, ये कोई फिक्स्ड चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है। विचारों, भावनाओं, संवेदनाओं का एक प्रवाह है। ये एहसास हमें अहंकार की पकड़ से, मैं मेरा से जुड़े दुख से मुक्त कर सकता है। बौद्ध धर्म में इसे अनात्म या नो सेल्फ कहते हैं। ये डरावना नहीं, बल्कि एक तरह से आजादी देने वाला अनुभव हो सकता है।
वाकई ये तो दिमाग और मन की एक जबरदस्त यात्रा है इस किताब में। अगर अगर इस पूरी किताब से कुछ मुख्य बातें, कुछ की टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे?
मेरे ख्याल से पहली और शायद सबसे जरूरी बात, न्यूरोप्लास्टिसिटी सच है और ये हमारी महाशक्ति है। हमारा दिमाग बदल सकता है और हम उसे बदल सकते हैं अपने विचारों, अपनी भावनाओं, अपने ध्यान से। हम अपने मानसिक अनुभवों के जरिए अपने दिमाग के आर्किटेक्ट बन सकते हैं। ये बहुत बड़ी एम्पावरिंग बात है।
हाँ ये सच में बहुत पावरफुल है। दूसरी बात जो मुझे बहुत काम की लगी, नकारात्मकता पूर्वाग्रह को समझना। ये जानना कि हमारा दिमाग क्यों स्वाभाविक रूप से बुरी चीजों पर ज्यादा ध्यान देता है, बुरे के लिए वेलक्रो, अच्छे के लिए टेफ्लॉन, ये हमें अपने तनाव और चिंता को पर्सनल फेलियर मानने से बचाता है। ये हमारी बनावट का हिस्सा है जिससे निपटना सीखना होगा।
बिल्कुल। तीसरा, अच्छी चीजों को जानबूझकर सहेजना, टेकिंग इन द गुड, वो HEL वाली तकनीक। सिर्फ अच्छा अनुभव होना काफी नहीं, उसे 10-20 सेकंड महसूस करना, उसे अंदर उतारना जरूरी है ताकि वो दिमाग में दर्ज हो सके, उसकी वायरिंग बदले। रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को सहेजना सीखना।
चौथा, दर्द और दुख का फर्क, दो तीर। ये कॉन्सेप्ट बहुत गहरा है। जिंदगी में दर्द पहला तीर तो आएगा ही, असली खेल हमारी प्रतिक्रिया दूसरा तीर का है। माइंडफुलनेस हमें उस प्रतिक्रिया से पहले एक स्पेस देती है
रुककर सोचने का मौका देती है। क्या मुझे वाकई ये दूसरा तीर खुद को मारना है या मैं अलग तरह से रिएक्ट कर सकता हूँ?
सही कहा। पांचवा, मन ही मस्तिष्क का रेगुलेटर है। हमारा जो सचेत मन है, सोचने समझने वाला हिस्सा PFC, वो हमारे भावनात्मक प्रतिक्रियाशील दिमाग एमिग्डाला को कंट्रोल करना सीख सकता है ट्रेनिंग से। यह हमें अपनी भावनाओं का गुलाम होने के बजाय उनका मालिक बनने की क्षमता देता है।
छठा, तन और मन का गहरा रिश्ता एम्बॉडीमेंट। हमारी भावनाएं सिर्फ दिमाग में नहीं होती, वो पूरे शरीर में महसूस होती हैं। और शरीर को शांत करना, जैसे गहरी सांस लेना या मसल्स रिलैक्स करना, मन को शांत करने का एक सीधा और तेज तरीका है। ये बात तो हमारी योग और ध्यान परंपराओं में हजारों साल से कही जा रही है।
बिल्कुल। और सातवां, खुशी, प्यार और ज्ञान, ये तीनों जुड़े हुए हैं। ये कोई अलग अलग चीजें नहीं है जिन्हें हमें अलग अलग पाना है। ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। एक शांत और सुखी मन दूसरों के प्रति ज्यादा प्यार महसूस कर पाता है। प्यार और सहानुभूति हमें दूसरों को और खुद को बेहतर समझने में मदद करते हैं, जो ज्ञान की ओर ले जाता है। शायद ये कुछ कुछ हमारे यहाँ के सत चित आनंद के विचार जैसा है, है ना, जहाँ ये तीनों अविभाज्य हैं।
हाँ, ये कनेक्शन बहुत जरूरी है। अच्छा, किताब में कुछ पंक्तियां ऐसी हैं जो इन विचारों को दिमाग में बिठा देती हैं, कोट्स कह सकते हैं।
हाँ, है तो कई। जैसे एक ये है, थोड़ा बदल कर, मन उसी का आकार लेता है जिस पर वह टिका रहता है। अगर आप बार बार खुद की आलोचना, चिंता और गुस्से पे ध्यान देंगे तो आपका दिमाग धीरे धीरे चिंता और दुख का आकार ले लेगा। वहीं अगर आप अच्छी भावनाओं, नेक इरादों पर ध्यान देंगे, कृतज्ञता पर, शांति पर, तो आपका दिमाग धीरे धीरे अंदरूनी शांति, आत्मविश्वास और खुशी का आकार ले लेगा। मतलब साफ है, हम जो सोचते हैं वैसे बन जाते हैं। आदतें दिमाग बनाती हैं।
और वो वाली, आपका मस्तिष्क नकारात्मक अनुभवों के लिए वेलक्रो जैसा है, लेकिन सकारात्मक अनुभवों के लिए टफलॉन जैसा। ये तो हर किसी को याद रहनी चाहिए। इससे बेहतर क्या समझाएगा कि नेगेटिविटी क्यों हावी होती है।
हाँ, और ये भी, पहला तीर घटना है, दूसरा तीर उस पर आपकी प्रतिक्रिया। आप हमेशा पहले तीर को रोक नहीं सकते, पर दूसरा फेंकना बंद करना सीख सकते हैं। ये दर्द और खुद से पैदा किए दुख का अंतर साफ करता है।
एक और जो मुझे बहुत शक्तिशाली लगी, एक सकारात्मक अनुभव के साथ बस कुछ अतिरिक्त सेकंड बिताकर उसे महसूस करके आप एक गुजरती हुई मानसिक अवस्था को एक स्थायी न्यूरल विशेषता में बदल सकते हैं। आप अपने मस्तिष्क में अच्छाई को, शांति को, खुशी को इंस्टॉल कर सकते हैं।
ये दिखाता है कि छोटे कदम भी कितने असरदार हो सकते हैं। ये हील वाली बात।
हाँ, और अंत में ये सार, आप अपने दिमाग का उपयोग करके अपने मस्तिष्क को बदल सकते हैं ताकि आपका मन बदल सके।
ये न्यूरोप्लास्टिसिटी और हमारी अपनी एजेंसी, हमारी क्षमता का निचोड़ है।
ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, क्रांतिकारी भी, लेकिन रोजमर्रा की जिंदगी में इसे उतारें कैसे? कुछ व्यवहारिक तरीके, एकदम सिंपल।
हाँ हाँ, बिल्कुल। सबसे पहला तो तनाव कम करने में। मान लीजिए ऑफिस में कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन है, दिल जोर से धड़क रहा है, गुस्सा आ रहा है, उसी वक्त बस 2-3 गहरी धीमी सांसें लेना, खासकर सांस छोड़ने पर ध्यान देना। खुद को याद दिलाना कि ये अमिग्डला की प्रक्रिया है, शायद खतरा उतना बड़ा नहीं जितना महसूस हो रहा है। फिर अपने PFC, अपने COO ब्रेन का इस्तेमाल करके सोचना कि बेस्ट रिस्पॉन्स क्या होगा।
इंस्टेंट रिलीफ के लिए और उदासी या निराशा से निपटने के लिए, अगर मूड ठीक नहीं है,
रोजाना दिन में बस 1-2 बार कुछ मिनट निकालकर हील, टेकिंग इन द गुड का अभ्यास करना। जानबूझकर किसी अच्छी चीज पर ध्यान देना, सुबह की पहली चाय का स्वाद, खिड़की से आती धूप, किसी सहकर्मी की मदद, बच्चे की हंसी, कुछ भी, उसे नोटिस करना और 15-20 सेकंड तक उस अच्छे एहसास को अपने अंदर महसूस करना, उसे सोखना। ये धीरे धीरे अंदर एक सकारात्मकता का बैंक बैलेंस बनाता है।
अच्छा, ये तो किया जा सकता है, रिश्तों में कैसे मदद मिल सकती है?
कई तरीकों से। एक तो सहानुभूति का अभ्यास करके, जब किसी से, मान लीजिए अपने पार्टनर या दोस्त से बात कर रहे हों, तो सच में कोशिश करें कि वो कैसा महसूस कर रहा होगा, उसके नजरिए से देखने की कोशिश करना। दूसरा, वो करुणा और दृढ़ता का संतुलन, दूसरों का ध्यान रखें पर अपनी जरूरतें भी शांति से पर मजबूती से बताएं, अपनी सीमाएं तय करें। और वो प्रेम कृपा ध्यान का अभ्यास रिश्तों में गर्म जोशी और समझ ला सकता है।
फोकस और काम पर असर, आजकल ध्यान भटकना तो आम बात है।
माइंडफुलनेस इसमें बहुत मदद करती है। सिर्फ 5-10 मिनट रोज सांस पर ध्यान देने का अभ्यास भी फोकस को बेहतर बनाता है। और वो इरादे वाली बात, कोई काम शुरू करने से पहले एक पल रुककर स्पष्ट इरादा बनाना कि अगले घंटे सिर्फ यही करूंगा, ये दिमाग को तैयार करता है। मल्टीटास्किंग से बचना, एक समय में एक काम पर ध्यान देना।
और पेरेंटिंग में आजकल पेरेंट्स बहुत तनाव में रहते हैं।
अगर हम अपनी भावनाओं को रेगुलेट करना सीखें तो बच्चों से ज्यादा धैर्य और समझ से पेश आ सकते हैं। और हम बच्चों को भी छोटी उम्र से ही उनकी भावनाओं को समझना और शांत रहने के आसान तरीके सिखा सकते हैं, जैसे स्टार ब्रीदिंग या अपनी पसंदीदा चीज को याद करके अच्छा महसूस करना।
तो कुल मिलाकर ये सिर्फ अच्छा महसूस करने के बारे में नहीं है, ये ज्यादा जागरूक और बेहतर इंसान बनने का एक टूलकिट है।
हाँ, कह सकते हैं अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहार के पैटर्न को बिना जज के देखना सीखना, ये आत्म जागरूकता हमें अपनी पुरानी अनहेल्दी आदतों को पहचानने और उन्हें बदलने में मदद करती है, ताकि हम ज्यादा होशपूर्वक जी सकें, ज्यादा समझदारी से चुनाव कर सकें।
इस पूरी चर्चा से मेरे लिए जो सबसे बड़ी सीख है वो यही सशक्त एहसास है कि हम सच में अपने दिमागी हार्डवेयर को अपने सॉफ्टवेयर यानी अपने मन से बदल सकते हैं। हम असहाय नहीं हैं। ये बहुत बहुत एम्पावरिंग विचार है। और वो वेलक्रो टेफ्लोन वाली बात, वो तो अब हमेशा याद रहेगी। लगता है मेरा दिमाग भी वेलक्रो ही है बुरी चीजों के लिए।
हम सबका है थोड़ा बहुत। और मेरे लिए टेकिंग इन द गुड की सादगी और उसकी शक्ति के रोजमर्रा के छोटे छोटे मामूली से लगने वाले पलों को सहेज कर हम वाकई अपने अंदर अपनी न्यूरल वायरिंग में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये बहुत उम्मीद जगाता है। और हाँ, ये देखकर भी अच्छा लगा कि कैसे आधुनिक विज्ञान उन बातों की पुष्टि कर रहा है जो हजारों साल पुरानी ध्यान परंपराएं सिखाती आई हैं। ज्ञान पुराना हो या नया, सच्चाई तो वही रहती है।
बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। अगर ये सच है कि हमारा हर अनुभव, हमारा हर ध्यान दिया गया विचार हमारे मस्तिष्क को लगातार बदल रहा है, उसे गढ़ रहा है, तो इस पल अभी हम अपने दिमाग को कैसा बना रहे हैं? क्या हम अनजाने में नकारात्मकता के रास्ते पक्के कर रहे हैं, या जानबूझकर अच्छाई, शांति और समझ के बीज बो रहे हैं?
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारंश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।